السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آج ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینے میں مبارک دن ہمیں عطا فرمایا، اور یہ ہے جمعہ کا دن. یوں تو یہ مہینہ ہی اتنا بابرکت ہے کہ اس کا ہر دن پا لینا انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے کافی ہے. بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن جلدی سے جنت میں چلے جائیں تو اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیجئے. ہم سے تو ایئرپورٹ پہ پہنچ کے، ڈاکٹر کے آفس میں پہنچ کے تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، اور کہاں یہ کہ جنت کا انتظار کرنا پڑے، وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا. ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جنت میں پہلے پہنچ سکتا ہے اگر وہ اپنے رمضان سے صحیح فائدہ اٹھائے. طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا کہ قبیلہ بلی کا ایک آدمی تھا، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک اور آدمی بھی اسی قبیلے کا ہجرت کر کے آیا. دونوں اکٹھے ہی مسلمان ہوئے تھے. ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت نیکیوں میں زیادہ محنت کرنے والا تھا. چنانچہ اس محنت کرنے والے نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی اس کے ایک سال کے بعد وہ فوت ہو گیا. طلحہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. اچانک میں نے ان دونوں کو وہاں موجود دیکھا. جنت سے ایک آدمی باہر آیا اور اس نے بعد میں فوت ہونے والے کو جنت میں جانے کی اجازت پہلے دے دی. کچھ دیر بعد وہ پھر نکلا اور شہید ہونے والے کو بھی اجازت دے دی. پھر میری طرف متوجہ ہو کے کہا، واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور تعجب اس پر کیا کہ شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، فوت ہونے والا پہلے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا، تمہیں کس بات پہ تعجب ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا، جو ایک سال بعد فوت ہوا اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے اور سال بھر میں اتنی اتنی رکعت نماز زیادہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے درجات میں تو آسمان اور زمین کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ فرق ہے. کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ پا لینا انسان کے لیے درجات میں کتنے بڑے فرق کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جلدی آپ کو جنت تک لے جا سکتا ہے یہ ایک مہینہ؟ اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں. یہ آپ کی زندگی میں آ جانا ہی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہونی چاہیے. اس کو ضائع نہیں کرنا. اس کو ضائع اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے جیسے ہم نے کل بات کی تھی، کہ نیت کو اگر خالص نہ کیا جائے. اس کے علاوہ بھی فالتو کاموں میں، فالتو باتوں میں جب ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو وہ بھی اس مہینے کو ضائع کر دینے کے برابر. جیسے مثلاً واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کل چل رہی ہیں، ان کو بار بار چیک کرتے رہنا، فون پہ گپ شپ کرتے رہنا، یہ آپ کے وقت کو کھا جانے والی چیزیں ہیں. अगर आप जानते हो तो आज आपको ये पता चलेगा कि एक एवरेज अमेरिकी दिन में 300 से ज़्यादा मर्तबा अपने फ़ोन को देखता है, यानी हर 4 मिनट में वो अपने फ़ोन को देख रहा होता है, और हर रोज़। जब ये रिसर्च मैंने पढ़ी तो मैं बहुत हैरान हुई और यही सोच रही थी काश इसकी जगह कुरान होता, हम उसमें इस तरह झांक कर भी देख लेते तो हमें कितनी बरकत मिल जाती। अंदाज़ा कीजिए, एक एक टेक्स्ट को खोलना, उसको पढ़ना, उसको जवाब देना, इसमें कितना वक्त चला जाता। हत्ता कि देखा गया कि लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं और 2-4 तरावी के बाद भी अपना फ़ोन ज़रूर उठा के चेक करते हैं, और जब उठ के मस्जिद से जा रहे होते हैं तब भी सबने अपने फ़ोन खोले होते। यूं लगता है थोड़ी देर को भी जो रابطہ कट गया था वो भी गवारा नहीं हुआ, तो दोबारा जोड़ रहे हैं। कभी अल्लाह ताला के साथ भी ज़रा देर को रابطہ कट जाने पे ऐसा एहसास होता है कि जल्दी इसे बहाल कर लूँ, ये रابطہ कट गया। इंसानों के साथ रابطہ कट जाने पे थोड़ी देर के लिए भी इतनी तशवीश, क्या यही कदर है हमें रमज़ान के कीमती वक्त की? तो आज से ये तहिया कर लें कि ठीक है अब फ़ोन देखेंगे, मगर चलो दिन में 5 दफ़ा देख लें, मगर ये नहीं कि इधर फ़ोन की घंटी बजी, इधर टिन हुआ, उधर हमने फ़ोन उठा लिया, फिर कितने ही देर हम उसी मैसेज को पढ़ने में फिर उसके बाद सोचने में लगे रहे, और जो अपनी मौजूदा हालत है उससे निकल के कहीं और पहुंच गए। तो इस रमज़ान में काबू पाना है खुद पे। जितनी दफ़ा फ़ोन से आवाज़ आए उतनी दफ़ा ज़िक्र शुरू कर दें, और कोई वक्त ऐसे बांध लें कि इस टाइम पर मैंने अपना फ़ोन चेक किया करना। घर वालों से भी कह दीजिए कि ज़रूरी बात हो तो कॉल कर लिया करें। इसी तरह दोस्त अहबाब से भी फालतू बातें करने से परहेज़ करें, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना अल्लाह का ज़िक्र कम होगा। हम कहते हैं ना ज़िक्र का वक्त नहीं मिलता, लेकिन कभी हमने ये टारगेट बनाया है कि मैंने इस रमज़ान में कम बोलना? नहीं बनाया तो अब बना लें। जहाँ खाना पीना कम होता है वहाँ क्यों ना बोलना भी कम हो। इब्ने हज़म कहते हैं खामोशी इतनी बड़ी दौलत है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने बोला और हलाक हो गए, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि वो खामोश रहा और खामोशी ने उसको तबाह कर दिया। तो थोड़ा सा खामोश रहने की भी हम आदत डालें, ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त अपनी ज़ुबान को चलाते रहें, ज़्यादा चलेगी तो गलतियाँ ज़्यादा होंगी। तो खामोशी का नुस्खा इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को गुनाहों से बचाइए। और आज तो वैसे भी कसरत से ज़िक्र करने का दिन है, और वो कौन सा ज़िक्र है? जुमे के दिन का ख़ास ज़िक्र दुरूद शरीफ है। आप में से किस किस को अपने नबी से मोहब्बत है? यकीनन आप सब कह रहे होंगे हमें, तो आपके नबी ने आपको आप ही के भले के लिए ये फरमाया है कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजो। वो खुद कह के गए हैं तो क्या उनकी बात नहीं मानेंगे? आज का दिन दुरूद के लिए वक्फ कर दीजिए। ज़िंदगी में वैसे भी दुरूद पढ़ने से बहुत सारी बरकतें हासिल होती हैं, मगर जुमे के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया तो इससे बेहतर बात फिर कौन सी हो सकती है? तो आज इतना दुरूद हमने पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर फ़ख्र करें कि मेरे उम्मती ने इतना दुरूद मुझ पर भेजा, फरिश्ते हमारे नाम के साथ ले जा के आपको ये दरूद के तोहफे पेश करें। वाकई ये तोहफा है जो आप अपने नबी को भेज रहे हैं, जिसके कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, फरिश्ते फ्री में डिलीवर करते हैं और इसको कहने में भी कोई मुशक्क़त नहीं। सबसे मुख्तसर दुरूद ये भी मसनून दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीयिना मुहम्मद। कितनी देर लगी मुझे ये कहने में? 3-4 सेकेंड। आप ख़ुद सोचें, फ़ोन पर हम कितनी सेकेंड तो छोड़ें, घंटे लगा देते हैं। और जिनसे मोहब्बत का दम भरते हों उनके लिए चंद घंटे ना लगा सकें, एक दिन ना दे सकें। और इसके लिए आपको पढ़ने में कोई वुज़ू की ज़रूरत नहीं, तस्बीह हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं, मुसल्ला बिछा के बैठने की ज़रूरत नहीं। बस जो भी काम कर रहे हैं आप, चाहे बर्तन धो रही हैं, बिस्तर बना रही हैं, इफ्तारी बना रही हैं, कपड़े इस्तरी कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप दुरूद के तोहफे भेजते जाइए और अपने लिए रहमतें और बरकतें समेटते जाइए। ये वो तोहफा है जो वन साइडेड नहीं है कि आपने इधर से भेजा और आगे से कुछ नहीं आए, आगे से भी तोहफे आते हैं, अल्लाह ताला तोहफे भेजता है। जानते क्या है वो तोहफे? वो एक गुलदस्ता है, इसमें बहुत सारे फूल लगे हैं, 10 रहमतों के, 10 गुनाहों की माफ़ी के, 10 दर्जात की बुलंदी के, 10 नेकियों के। बहुत बड़ा सा एक गुलदस्ता है। इब्ने कय्यम ने 40 के करीब फ़वाद बताए हैं दरूद शरीफ के एक दफ़ा पढ़ने के। और ये वाला अभी जो मैं आपको बता रही हूँ गुलदस्ता, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपने हिम्मत करके 10 दफ़ा पढ़ लिया, 10 दफ़ा सुबह और 10 दफ़ा शाम, ये तो रोज़ ही पढ़ना चाहिए, तो क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात हासिल हो जाएगी। कितना आसान अमल है ना। कितनी मुशक्क़त लग गई इसमें, कितनी मेहनत लगी, कुछ भी नहीं। मगर ये काम वो ही कर सकते हैं जो इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के फोकस करें, इस बात को अहमियत दें, ये समझें कि मुझे अल्लाह की रहमतों की तो बड़ी ज़रूरत है, मुझे बख्शिश की भी बहुत ज़रूरत है, मुझे नेकियों की भी बहुत ज़रूरत है। एक बात कहने से अगर 10 नेकियाँ मिल गई तो ये तो बड़ा नफ़े का सौदा है। तो जो ये समझता है कि मुझे ज़रूरत है, वो ज़रूर इस दरूद शरीफ के नुस्खे को आज़माएगा। चूँकि जुमा का दिन है, इस दिन हमें सूरह कहफ भी पढ़नी है ताकि ये हमारे लिए क़यामत के दिन भी नूर बन जाए। ये दुनिया में भी हमें फितनों से बचाने वाली है। जो चीज़ सबसे बड़े फितने जो कि फितना दज्जाल है उससे बचा ले, तो छोटे छोटे फितने तो कुछ भी नहीं हैं। लिहाजा आज के दिन सूरतुल कहफ पढ़िए। फिर आज के दिन एक ऐसी घड़ी भी है जिसमें बंदा मोमिन जो भी दुआ करता है वो कबूल की जाती है, और ये बहुत ही मुख्तसर सी घड़ी है। और ये जुमे की नमाज से मगरिब के दरमियान किसी वक्त में आती है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। लिहाजा दुआओं की कसरत करिएगा, हमें मौका मिल रहा है। फिर भी अगर हम दुआ नहीं करें तो इसका मतलब है हमें कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत से किसी चीज़ की चाहत नहीं है। क्योंकि अगर किसी की चाहत कोई भी चीज़ को हासिल करने की हमारी जान का मसला बना हो ना, तो हम ज़रूर दुआएं करेंगे और दिल से करेंगे। लेकिन आजकल हमारा काम ज़्यादातर ये रह गया कि हम ये भी दूसरों को चाहते हैं वो हमारे लिए करते हैं, हमें खुद दुआ भी ना करनी पड़े। तो आप देखते हैं बाज़ दफ़ा लोगों को किसी चीज़ की चाहत होती है तो उसके लिए वो लंबे लंबे चिल्ले काटते हैं, रियाजतें करते हैं। और यहाँ पर आपको आसान सा एक नुस्खा दे दिया गया जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपके नबी ने बताया कि दुआ करेंगे इस टाइम पे तो वो दुआ रद्द नहीं होगी। तो इस चांस को अपने हाथ से आज जाने नहीं देना। खूब दिल से दुआ करनी। जो भी आप वाकई चाहते हैं वो अल्लाह ताला से मांगे। वैसे रोज़ेदार की तो सारा दिन में दुआएं कबूल होती हैं, कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि आप दुआ करें और कबूल ना हो, लेकिन इफ्तार के वक्त की दुआ तो ये हमें पता चलता है कि वो तो रद्द होती ही नहीं है। तो कहाँ ये कि रोज़ा भी है, रमज़ान भी है और जुमा भी है, और इसकी इफ्तार का वक्त, देखिए कितनी सारी बरकतें इकट्ठी हो गई ना। तो आपको कोई भी मसला हो, रिज़्क की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, हस्बैंड की तरफ से है, कोई बीमारी है, कोई दुनिया की चीज़ है या आखरत की है, इन घड़ियों में मांगिए। जब कायनात के सबसे सच्चे ने फरमा दिया कि दुआ कबूल होती है तो कोई शक ना करे। अल्लाह ताला तो नवाजना चाहता है, फिर भी हम गाफिल रहे। और ये मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जब भी रमज़ान में अल्लाह ताला से कुछ मांगा वो मुझे ज़रूर मिला। ये तजर्बे से बता रही हूँ आपको। बहुत सारी चीज़ें आज मैं गिन सकती हूँ कि जो मैंने रमज़ान में वाकई गिड़गिड़ा के मांगी। एक ये होता है ना कि इंसान ऐसे ही बस एक दुआएं पढ़ ली, पढ़ने वाली नहीं, वो जो वाकई दिल से मांगी। आप भी इस रमज़ान में इस चीज़ का तजर्बा करके देखिए, आप अल्लाह ताला से मांगते रहिए दिल की गहराइयों से और यकीन के साथ, और उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। हमें सारी दुनिया की दौलत भी अता कर दे तो ज़र्रा बर भी कमी उसकी बादशाहत में नहीं आती, तो उसको फिर क्या परवाह देने से। लिहाजा पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगिए। और कोई ख़ास दुआ जो हम समझते हों कि ये बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है, हमें मांगनी चाहिए, तो हमारे इस मसले को भी सहाबा कराम ने हल कर दिया। उन्होंने हमारे लिए वो सवालात कर लिए जो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज होते तो हम उनसे करते। हदीस में आता है, तिर्मिज़ी की हदीस है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है। हमें भी दिल करता है ना हम जाने सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत वल मुआफत फिद दुनिया वल आखिरा, यानी आफियत की दुआ, दुनिया और आखरत में कि आफियत मिल जाए। आफियत क्या चीज़ होती है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें पता ही नहीं होता हम क्या मांग रहे हैं, वो क्या चीज़ है, आफियत क्या है। आफियत है असल में अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को तहफ़्फ़ुज़ दे देना, प्रोटेक्शन, कि दुनिया में भी बीमारियों, बलाओं, आफतों, तकलीफ़ों, परेशानियों, मसाइल से अल्लाह बचा ले, और आखरत में भी, दीन में भी आजमाइशों से बचा ले, सख्तियों से बचा ले, आखरत में भी इसी तरह हर सख्ती से बचा ले। यानी अगर आप इसको मुख्तसरन कहें तो हर शर से बचाने की दुआ और हर खैर के बाकी रहने की दुआ होती है आफियत। जिसको आफियत दुनिया में भी मिल जाए और आखरत में भी, फिर और क्या चाहिए। तो वो साहिल जो था वो दूसरे दिन भी आया, उसने यही सवाल किया कि आप मुझे कोई दुआ बता दे जो बेहतरीन दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही दुआ बता दी। तीसरे दिन भी आया, फिर यही सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन भी यही फरमा दिया और फरमाया साथ कि जिसको दुनिया और आखरत की आफियत मिल जाए तो फिर इससे ज़्यादा बढ़ के और कौन सी चीज़ हो सकती है। यानी इतनी बड़ी चीज़ है ये, इतनी बड़ी बरकत है। लिहाजा आफियत मांगिए दुनिया की भी और आखरत की भी, सिर्फ दुनिया की नहीं, हमें आखरत की भी चाहिए। वहाँ पे भी तो हमें हर एक तकलीफ़ से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए أو صباح شام كدوا ومبي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اتنی سی بھی مانگ لے تو بھی بہت زبردست ہے، لیکن عافیت ضرور مانگی اپنے لیے. آپ نے مختصر الفاظ میں سب کچھ ہی مانگ لیا جب آپ نے یہ مانگا تو. اسی طرح جمعے کا دن جو ہے نا، صدقہ کے لیے ضرور اپنے لیے خاص کریں. ویسے تو آپ ہر دن صدقہ کیجئے، لیکن جمعہ کے دن صحابہ کرام خاص طور پہ صدقہ کرتے تھے. جیسے عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن غلام آزاد کیا کرتے تھے. اگر ایک جمعے کو نہیں کر سکتے تھے تو اگلے جمعے کو دو غلام آزاد کرتے تھے. تو صدقہ کی اور بھی صورتیں ہیں. غلاموں کا تو آج نہیں ہے رواج، لیکن آپ کسی نہ کسی صورت میں ضرور صدقہ کیجیے. اور اسی طرح ایک خاص عمل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو بہت ہی چھوٹا سا کام ہے لیکن جس سے جنت کے آٹھ دروازے، اور آپ کو پتہ ہے جنت کے آٹھ ہی دروازے ہیں، وہ آٹھ کے آٹھ دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. بہت ہی آسان کام، ذرا بھی محنت نہیں لگے گی اس میں، بس صرف تھوڑی سی توجہ یاد رکھنا ہے بس. وہ کیا ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد کچھ کلمات کہتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جو کوئی بھی اچھی طرح وضو کرے تو سب سے پہلی کیا بات ہے، اچھی طرح وضو کرنا. یعنی آپ صحیح سے ناک جھاڑیں، آپ کلی صحیح سے کریں، آپ بازوؤں کو صحیح سے دھوئیں، کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیجئے، یہ نہ ہو کہ پانی نیچے نہ جائے اور وضو سے آپ محروم رہ جائیں. جو اچھی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو یہ کسی ایسے ہی چلتے پھرتے بندے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی بات ہے. جب نبی کوئی چیز فرما دے نا تو پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو لیجیے، اس کو ایسے سنیں کہ یہ حق بات ہے، یہ پتھر پہ لکیر بات ہے، یہ سچی بات ہے. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم دیکھیں کہ بعض لوگ یہ چھوٹا سا عمل کر کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہیں جا رہے ہیں اور ان کو پکارا جا رہا ہے، اور ہم اس دن سوچیں کہ ہائے یہ تو چھوٹا سا، یہ تو کام تھا، کاش میں بھی کر لیتی. اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگ رہے، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں یا بزی بہت رہتے ہیں یا آپ کے مسائل بہت ہیں یا آپ کے پاس جو بھی کام ہے، یا آپ بڑے ہیں چھوٹے ہیں بڑھاپے میں ہیں کسی بھی ایج کے ہیں، یہ کام کرنا تو سب کے لیے آسان ہے. اسی طرح جب رات کو سو رہے ہیں تو اگر رات کو آپ وضو کر کے سوئیں گے نا، حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کیا سب سے پہلی بات ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو ہو کے سوئے، یعنی آپ نے وضو کیا اور آپ بستر پہ آئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ سو گئے، پھر رات کو کسی وقت بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیں نا، اب کتنے سارے چانسز ہیں ہمارے پاس دعا قبول کرانے کے، پھر بھی ہم ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں، ان کو لائٹ لیں. تو ہم اپنے موقع تو خود گنوا رہے ہیں نا. تو افطار کا وقت ہو گیا جیسے میں نے آج آپ کو بتایا، جمعے کی گھڑیاں ہو گئیں، اسی طرح رات کو باوضو ہو کے سونا اور ذکر کرتے ہوئے سونا، پھر رات کو آنکھ تو کھل ہی جاتی ہے، اور نہیں کچھ تو باتھ روم جانے کے لیے کھل جاتی ہے. تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیجئے، آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز عنایت کرے گا. لہٰذا ان چیزوں کا اگر اہتمام کریں گے تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ہمارے لیے کہاں تک فائدے کا باعث بن سکتے ہیں. ہم دنیا بھی پا سکتے ہیں اور آخرت بھی پا سکتے ہیں، دنیا کی حسنہ بھی مل جائے گی اور آخرت کی حسنہ بھی مل جائے گی. تو قیمتی لمحات کو قیمتی جانیں اور ان خزانوں کو سمیٹتے جائیں، ساری زندگی کے گناہ بخشوا لیجئے۔ وہ سب خواہشات جو آج تک دل میں تھیں وہ اپنے رب کے سامنے رکھ دیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔